आगे की लीला का हम वर्णन करेंगे और स्वाभाविक है कि हमें अति संक्षिप्त में वर्णन करना होगा। एक दिन हम आप लोगों के सामने चर्चा किए थे इस बात की, जब सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर भगवान की लीला का वर्णन कर रहे थे, करने से प्रारंभ में जही भगवान राम की लीला का वर्णन राम की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी नवम स्कंध में किया गया है। तो वर्णन करने के पूर्व सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, मैं आपके समक्ष इस सभा में, आपकी सभा में भगवान राम की लीला का मैं अति संक्षिप्त वर्णन करूंगा। मैं वर्णन करने जा रहा हूं भगवान राम की लीला का, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। और सुखदेव गोस्वामी ने अपने संक्षिप्त वर्णन के औचित्य को इस प्रकार बताया, एक कारण है कि मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। परीक्षित महाराज की आयु जब कथा कहने सुनने के लिए बैठे थे तो उस समय केवल 7 दिन की थी। 7 दिन में ही जो कुछ उन्हें श्रवण करना था वह सुनना था। और आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध हैं और राम की लीला का वर्णन वो 9वें स्कंध में कर रहे थे, तो लगभग वह 4वां दिन होगा। परीक्षित महाराज जब श्रवण कर रहे थे तो श्रवण का उनका 4वां दिवस होगा, होना चाहिए। 9, 12 स्कंध में 9वें स्कंध की कथा सुन रहे हैं तो अब और 3 स्कंध बाजू में है, 8 स्कंध बीत चुका है, तो लगभग 4वां दिन होना चाहिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे थे कि आपके पास कम दिन है, 3 दिन का आपके पास समय है। तो विस्तार के साथ मैं कथा को प्रस्तुत नहीं कर सकता, आपके पास समय का अभाव है। और दूसरा कारण सुखदेव गोस्वामी ने बताया, तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापते मुहु। और इसके अतिरिक्त मैं संक्षेप में इसलिए भी वर्णन करूंगा कि आपने बार बार राम की लीला का, रामचरित का श्रवण और कीर्तन किया है, श्रवण किया है बार बार। अभी तो परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया गया था ऋषि कुमार के द्वारा, लेकिन जब राज संचालन करते थे, राजा थे, तो उस समय भी उन्होंने राम लीला का श्रवण किया था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापते मुहु, सीतापति भगवान राम के चरित्र का आपने बार बार श्रवण किया है। पहले वो श्रवण कर चुके थे, या प्रचलित बात है कि राम लीला बहुत काल से, बहुत प्राचीन काल से लोग इसको श्रवण कीर्तन करते रहे हैं। अब हरिवंश पुराण इत्यादि पढ़ेंगे, हरिवंश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो उसमें एक दिन द्वारिका का जिक्र है, द्वारिका भगवान की द्वारिका का लीला का वर्णन किया जा रहा था, हरिवंश पुराण में किया गया है। तो द्वारिका में एक दिन संध्या के समय का वर्णन हो रहा था, संध्या के समय भगवान क्या कर रहे थे। तो द्वारिका में बैठकर भगवान रामलीला देख रहे थे, लीला का अभिनय हो रहा था, किया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था, ड्रामा नाटक किया जा रहा था। और उसमें हरिवंश पुराण में वर्णन है कि कौन कौन पात्र है, किसका, कौन कौन से लोग किसका भूमिका निभा रहे थे, नाम भी लिखा है। तो 5000 वर्ष पूर्व, कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान राम की लीला प्रचलित थी और लोग बार बार उसको गाते थे, उसका श्रवण कीर्तन कर देते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चूंकि आपने बार बार इसका श्रवण कीर्तन किया है, इसलिए मैं अति संक्षिप्त रूप से उस लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो जैसा हम संध्या के समय दो तीन दिन से तीन चार दिन से कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में काफी लीलाओं का वर्णन हम किए हैं, फिर भी संक्षिप्त में चूंकि आज रामनवमी है, आज के ही दिन भगवान का आविर्भाव अयोध्या में हुआ था, भगवान का आविर्भाव अयोध्या में हुआ था, और यह जो महीना है इसको चैत्र का महीना है, चैत्र मास की नवमी तिथि है, नवमी तिथि को, चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान का आविर्भाव हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे अयोध्या में मध्य दिवस में 12 बजे दिन में भगवान का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए भी कि वो भगवान कृष्ण चंद्रमा के वंश में जन्म लिए थे, चंद्र वंश में, सोम वंश में, तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा का वंश है तो चंद्रमा रात्रि के समय विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में जन्म लेने के कारण रात्रि में उनका आविर्भाव हुआ था, और भगवान का आविर्भाव, भगवान राम का आविर्भाव सूर्य वंश में हुआ था, भगवान सूर्य का जो वंश है, सूर्य जो देवता जो आकाश में दिन के समय चमकते हैं, जिनके कारण रात्रि समाप्त होती है दिवस रहता है, तो उन्हीं के वंश में भगवान का अवतार हुआ था। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की उपस्थिति में ही अवतार लिए थे अयोध्या में, भगवान का अवतार हुआ अयोध्या में, भगवान ने विविध अपनी बाल लीलाएं प्रस्तुत की। इसके बाद भगवान ये एक यात्रा की हुई थी सिद्धाश्रम की विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र एक दिन आए जब भगवान का मानवीय गणना के अनुसार लगभग उम्र 16 वर्ष का था, 15-16 वर्ष का था, विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम गए थे, तो वहां पर भगवान ने ऋषि के विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और रक्षा के उपरांत भगवान मिथिला में गए थे, जनक जी के यहाँ गए थे, और वहीं पर भगवान स्वयंवर सभा में भाग लिए थे, और भगवान चूंकि उस स्वयंवर सभा में जो शर्त रखा गया था कि जो भी व्यक्ति शिव जी के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह हुआ होगा, यह जनक जी की प्रतिज्ञा थी, सीता जी के जो पिता थे वो ऐसा प्रतिज्ञा करके रखे थे, तो भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया था, प्रसिद्ध कथा है, और इस तरह भगवान का विवाह जनकपुर में हुआ था, मिथिला में हुआ था, जो उत्तरी बिहार का इस समय जो अंग है, उत्तरी बिहार और नेपाल का। फिर भगवान विवाह के उपरांत अयोध्या में आए, और लगभग भगवान 12 वर्ष तक, विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष तक भगवान अयोध्या में रहे, और इसके बाद दशरथ जी अपने गुरु जी के विशेष आग्रह से, उनकी सम्मति से भगवान को, राम को राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, परंतु वह राज्याभिषेक तो संभव नहीं हो सका, भगवान की माँ कृष्ण, भगवान राम की जो माँ थी सौतेली माँ थी कई उसकी इच्छा नहीं थी कि भगवान राज्य के उत्तराधिकारी बने, वह चाहती थी कि जो उसके अपने पुत्र थे भरत राज्य के उत्तराधिकारी बने, इसलिए उसने उसकी सम्मति नहीं होने के कारण दशरथ जी वचनबद्ध थे कि कैकेयी के वचन का पालन किया जाएगा, इसलिए भगवान को जंगल में जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। तो इस श्लोक में त्यक्त्वा सुदुष तेज सूर्यप्सित राज्य लक्ष्मी, भगवान ने क्या किया कि सूर्यप्सित राज्य लक्ष्मी, जो कि अयोध्या का जो वैभव था, उसकी संपत्ति थी, उनका जो सुख था, उसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे, इंद्र इत्यादि देवताओं के लिए भी वह दुर्लभ राज्य लक्ष्मी थी, परंतु उसका भगवान ने परित्याग कर दिया, और भगवान अपनी पत्नी सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। भगवान वन में जाते समय गंगा जी को पार किए और अगस्त जी के पास, उसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम में गए प्रयाग में। इसके बाद वहां से आगे दक्षिण की दिशा में बढ़े तो उनका मुलाकात हुई वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जो बहुत बड़े ऋषि हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने रामायण कथा लिखी है, उनसे भगवान पूछे कि आप वाल्मीकि जी बताइए मेरे लिए, मैं पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे 14 वर्ष तक वन में निवास करना है, तो कैसा उपयुक्त स्थान हमारे लिए बताइए जहां मैं 14 वर्ष तक निर्विघ्न रह सकूं। वाल्मीकि जी ने उनको भगवान को बताया कि आप चित्रकूट में रहिए, मंदाकिनी नदी के तट पर, वहां बहुत अच्छा जगह है। भगवान वहां आ गए, चित्रकूट में निवास करने लगे। परंतु जब भरत जी को पता लगा, भरत जी जिस समय भगवान राम अयोध्या से बाहर निकले थे उस समय अयोध्या में नहीं थे, अन्यत्र वो गए हुए थे, उनको बुलाया गया। उसी क्रम में यह घटना घटी थी कि जब भगवान राम जंगल में चले गए फिर नहीं लौटे तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई। फिर भरत जी को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि सब लोग कहे कि आप राज्य का संचालन कीजिए, आपके पिताजी का ही को अभी अभीष्ट है, भगवान राम जंगल में चले गए हैं। परंतु भरत जी राज्य को स्वीकार नहीं किए, वे पुनः भरत जी भी चित्रकूट में आए और प्रार्थना किए भगवान से कि आप अयोध्या में लौटिए, आप राज्य का संचालन कीजिए। परंतु भगवान राम राजी नहीं हुए, चित्रकूट में भगवान निवास करते थे। इसके बाद भगवान वहां से, क्योंकि वहां पर पता लग गया था अयोध्या के नागरिकों को, बहुत लोगों को, तो बार बार वहां आते रहते थे लोग, इसीलिए भगवान चित्रकूट का भी परित्याग कर दिए और भगवान दंडकारण्य में आ गए। यह जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, महाराष्ट्र का, नासिक इत्यादि जो क्षेत्र है, इसको यह दंडकारण्य, दंडक अरण्य, तो भगवान वहां के लिए दंडकारण्य में आए। भगवान के जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना, दुखद घटना यहां पर रहते हुए, दंडकारण्य में रहते हुए, पंचवटी में रहते हुए यह घटी कि सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी की चोरी हो गई। रावण जो लंका का रहने वाला था, असुर था, वो सीता जी का अपहरण किया, सीता जी को लंका में ले गया। तो भगवान राम बड़े दुखी हुए, पत्नी का अपहरण हो गया, सीता जी की चोरी हो गई, तो एक सामान्य मनुष्य जैसा दीनता पूर्वक भगवान रोते हुए सीता जी का अन्वेषण करने लगे। यदि को भगवान है, हमें जानना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी जब भगवान एक मानवीय लीला करते हैं तो मनुष्य जैसा वो रोते थे, पशुओं से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, पेड़ों से पूछते थे, पहाड़ों से, पत्थर से पूछते थे कि आप लोग सीता जी का पता बता दो। जैसे तैसे करके उसी क्रम में उनको जटायु, एक पक्षी से मुलाकात हुई, तो पक्षी ने, जटायु ने बता दिया कि सीता जी का अपहरण रावण किया है और लंका के तरफ ले गया है। तो भगवान को कुछ क्लू मिल गया, जटायु जी ने बता दिया। इसके बाद भगवान पुनः दक्षिण की तरफ बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते अनेक ऋषि महात्माओं से, मुनियों से मुलाकात हुई। कल हम लोग चर्चा किए थे, एक बहुत भगवान के अन्यतम भक्त थी सबरी, उनसे उनके मुलाकात हुई थी और सबरी ने ही भगवान को बताया कि भगवान यदि आप सीता का अन्वेषण करना चाहते हैं तो आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, पंपासर के नजदीक में वो पर्वत है, तो वहां पर सुग्रीव नाम के बानर राज रहते हैं, बानरों के राजा रहते हैं, उनके पास अनगिनत असंख्य बंदर हैं, आप उनसे मित्रता कर लीजिए तो वे सहायक हो सकते हैं सीता का अन्वेषण करने में, लाखों लाखों उनके पास बंदर हैं, उनके पास सेना है, उनकी सहायता से आप सीता जी का अन्वेषण कीजिए। इसके बाद भगवान और आगे बढ़े ढूंढते हुए, भगवान राम और लक्ष्मण, आगे बढ़ते हुए तो अगस्त जी नाम के महात्मा थे। अगस्त जी ने भगवान को बताया, फिर भगवान पूछे कि मैं दंडकारण्य में कहा मुझे नहीं, उसके अगस्त जी से पहले मुलाकात हुई, मैं उससे तक पीछे गया। सबरी ने बताया तो भगवान ऋषिमुख पंपा सरोवर पर गए। तो कल हम लोग यहां तक की कथा संक्षेप में वर्णन किए थे। भगवान पंपा सरोवर पर, सबरी के कहने से भगवान पंपा सरोवर पर आ गए। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर अभी भी स्थान है। ऋषिमुख पर्वत है, पहाड़ी है, जिस पर सुग्रीव जी निवास करते थे। तो हम लोग कल थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किए थे, लेकिन उसकी थोड़ा आवृत्ति करते हैं। सुग्रीव के वहां पर रहने का यह कारण था कि सुग्रीव और बाली दो भाई थे, बड़ी उनमें घनिष्ठ उनका प्रेम था, संबंध था दोनों भाइयों में। लेकिन एक बात की ऐसी घटना घटी कि एक असुर था, वह आक्रमण किया उनकी राजधानी पर। सुग्रीव और बाली जहां रहते थे, बाली की राजधानी पर, बाली राजा था, तो दोनों मिलकर उसका पीछा किए, वह भाग गया। जब वह भाग गया तो एक गुफा में प्रवेश हो गया, असुर था, गुफा में प्रवेश कर गया। तो दोनों भाई पीछा कर रहे थे, असुर को वध करना था। तो बाली ने कहा सुग्रीव से, अपने भाई से, कि आप ऐसा कीजिए कि इसके गेट पर, गुफा के गेट पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं जाता हूं उसमें प्रवेश करता हूं, असुर को मारकर लौटूंगा, तो जब तक मैं नहीं वापस आता हूं तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तो 12 दिन तक प्रतीक्षा करने को कहा था, 12 दिन तक आप प्रतीक्षा कीजिएगा, और यदि मैं नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि मेरी मृत्यु हो गई, आप फिर लौट जाइएगा। तो सुग्रीव जी गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, बाली उसमें अंदर में प्रवेश कर गए थे असुर। वहां पर उन्होंने 30 दिन तक प्रतीक्षा किया, 1 महीना तक प्रतीक्षा किया। 12 दिन कहे थे 12 दिन प्रतीक्षा, 12 दिन के बाद आप लौट सकते हैं, तो 30 दिन प्रतीक्षा की। 30वें दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर से रक्त की धारा, नदी जैसा धारा आने लगा, प्रवाहित होने। तो ये डर गए कि उस राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया है, और हमारे भाई का जो रक्त है उसके गुफा से जैसे तैसे आ रहा है। तो इन्होंने क्या कि उस बहुत बड़े पत्थर से उसको बंद कर दिया गुफा को और चले गए। शोक संतप्त हो गए, भाई की मृत्यु हो गई। वहां गए तो उन्होंने जो कुछ श्राद्ध क्रिया जो कुछ किया, करने के बाद कोई राजा नहीं था तो मंत्री लोग कहे, जबरदस्ती कहे कि अब भाई आपके नहीं है तो आप राज्य का संचालन कीजिए, राजा बन जाइए। तो एकदम अनिच्छा पूर्वक मंत्रियों के कहने से सुग्रीव राज्य का संचालन कर लगे, राजा बन गए। कुछ दिन के बाद देखा कि वो बाली उधर से लौट कर आया। तो लौट कर आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो हमारा भाई राजा बना हुआ है, राज संचालन कर रहा है। गुफा में घटना घटी थी कि बाली ने, बाली को राक्षस नहीं मारा था, राक्षस को ही बाली मार दिया, और हम निकलना चाहते थे, मारकर निकलना चाहते थे, तो देखे कि वो बंद किया गया। बंद किसने किया? सुग्रीव ने बंद कर दिया। तो उनके मन में दुर्भावना आई कि देखो हमारा भाई है, हमको इसमें बंद करके चला गया, इसलिए कि वो इसमें मर जाएगा, हमको वो ही मारना चाहता था, लेकिन कैसे कैसे पार करके आए। तो यह दोषारोपण बाली ने उनसे किया और ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया, किसी प्रकार का पूछताछ नहीं, सीधे क्रोध किया, बहुत उनको मृत्यु दंडित तो नहीं किया लेकिन बहुत उनको मारा और राज से भगा दिया, कुछ सुनना नहीं चाहता। तो वे भाग कर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, क्योंकि वहां पर बाली नहीं आ सकता था। मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि बाली जब तुम जिस क्षण इस पर्वत पर आ जाओगे, ऋषिमुख पर्वत पर आ जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यार राम, जितने रामायण है, राम का चरित्र जहां वर्णन किया गया, राम की लीला का वर्णन किया गया, तो मतंग ऋषि के श्राप से बेचारा वो नहीं आता था, इसीलिए सुग्रीव वहां पर आश्रय लिए हुए थे। अन्यथा जो दूसरे जगह होते तो बाली उनको मार सकता था, इसलिए वहां पर निवास कर रहे थे। तो बंदरों के साथ निवास कर रहे थे, उसमें हनुमान जी भी थे। हनुमान इनके अधीनस्थ थे, सबऑर्डिनेट थे, राजा थे सुग्रीव और इनके अधीनस्थ ये लोग, और भी बानर जामवान थे, हनुमान इत्यादि थे। तो भगवान राम वहां पर जा रहे थे। भगवान राम को तो कहा था शबरी ने कहा था कि आप सुग्रीव के पास जाए, उनसे मित्रता कीजिए, ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं। तो भगवान जब उधर से आ रहे थे नीचे पहाड़ की, पहाड़ी के नीचे भ्रमण कर रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे, सीता जी का खोज कर रहे थे, उसी समय बाली हनुमान जी इत्यादि बैठे थे पर्वत के ऊपर शिखर पर। उन्होंने देखा कि दो राजकुमार पर्वत की तलहटी में घूम रहे हैं। तो बाली को सुग्रीव जी को शक हुआ, संदेह हुआ कि हो ना हो बाली स्वयं तो नहीं आ सकता है, तो किसी लोगों को, अपने लोगों को भेजा है हमको मारने के लिए, राम और लक्ष्मण को देख। तो बड़ा घबराए कि हमको अब तो यहां से भी इसका भी स्थान का परित्याग कर कहीं भाग जाना चाहिए। तो जानने के लिए कि यथार्थ बात क्या है, वास्तविकता क्या है, कौन आ रहे हैं वो लोग, तो उसने हनुमान जी को उसने भेजा कि हनुमान जी आप जाइए, ब्राह्मण का रूप बनाकर जाइए, ब्राह्मण के रूप में जाइए और जाकर पता लगाइए कि वो लोग आने कौन है। यदि वे लोग बाली के व्यक्ति होंगे, उसके सैनिक होंगे, उसके दूत होंगे, तो आप वहीं से नीचे से ही संकेत कीजिएगा, मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। अन्यथा यदि दूसरा कोई व्यक्ति है तो वहीं से संकेत कीजिएगा, मैं ही आ रहूंगा। तो सुग्रीव के कहने से, सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर नीचे आए, जहां भगवान घूम रहे थे सीता जी का गुफाओं में, जहां तहां अन्वेषण कर रहे थे, तो हनुमान जी वहां पर ब्राह्मण के भेष में आए। हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किए। तो हनुमान जी नहीं जानते थे कि ये कौन है, उनको जानने की इच्छा थी कि ये कौन है। तो आकर उनसे पूछे, कोतुम श्यामल गौर श्रीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, आप कौन हैं? इस क्षत्रिय रूप में आपका वेशभूषा क्षत्रिय का जैसा है, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं, आयु धारण किए हुए हैं, आप कौन हैं? आप अपना आइडेंटिटी बताए, अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? विशेषकर हनुमान जी ने अभी कहा कि यह भूमि दुर्गम भूमि है, कठिन भूमि है, कंटक से आवृत यह भूमि है, पत्थरों से आवृत भूमि है, बहुत दुर्गम स्थान है मनुष्य के लिए, यहाँ इन एक्सेसिबल प्लेस है, यहाँ आ नहीं कोई सकता है, आने में बहुत कठिनाई होती है, आप यहाँ कैसे आए? यह भूमि इतना कठोर है, आपके चरण कमल, आपके जो चरण है कमल से भी करोड़ों गुना सुकुमार है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन विचरहु स्वामी, आप इस भूमि पर क्यों विचरण कर रहे हैं? कठिन भूमि में आप इस सुकुमार चरणों से क्यों भ्रमण कर रहे हैं? इसके बाद हनुमान जी है कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह दुख आतप बाता, और आपका शरीर पैर तो सुकुमार है ही, पूरा शरीर सर्वांग सुंदर है, कितना आपका सुकोमल शरीर है, इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वत की हवाएं और यहाँ का बात और धूप आप यहाँ का आप सहन करते हुए क्यों घूम रहे हैं? भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने, उनको शक हुआ हनुमान जी को, उन्होंने, ये उनको ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो तीन देवता हैं ब्रह्मा और विष्णु महेश, उनमें से कोई दो तो नहीं है आप यहां पर आप घूम रहे हैं, शिव जी अथवा ब्रह्मा जी अथवा तीनों देवताओं में से कोई दो हो सकते हैं आप? अथवा उन्होंने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि नर नारायण ऋषि तो आप नहीं हैं, जो बद्रिकाश्रम में भगवान दो रूपों में, नर और नारायण, दो ऋषि के रूप में, दो तपस्वी के रूप में भगवान रहते हैं। भगवान है लेकिन दो रूपों में, वहां पर ऋषि के रूप में वहां तपस्या करते हैं, बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। ये दो थे इसलिए उनको कहा कि शायद आप नर नारायण ऋषि तो नहीं है, लेकिन भगवान के सौंदर्य से हनुमान जी इतने अभिभूत थे, इतना भगवान का सुंदर और मनोहर कमनीय रूप था, आकर्षक रूप था, कि उन्होंने अंत में यह पूछा कि ऐसी तो बात नहीं है कि हो सकता है कि आप स्वयं भगवान तो नहीं है। जग का रन तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार, अथवा ऐसा तो नहीं कि आप स्वयं भगवान है, दूसरे अवतार नहीं। कभी कभी तो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, क्षीरोदर साई विष्णु अवतार लेते हैं, तो कहने के अवतारों में इतनी सुंदर, इतना आकर्षक नहीं, आकर्षण नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं भगवान हैं, तो आप कृपा करके हमको बताइए कि आप कौन हैं। हनुमान जी यही जानना चाहते थे कि आप कौन हैं। भगवान आत्मकथा बताए, भगवान बड़े एक, भगवान का एक विशिष्ट सील है, भगवान ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हनुमान जी को शक हो रहा था कि भगवान हो सकते हैं। एक श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि यदि किसी को यह देखना है कि आदर्श मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसको भगवान राम के चरित्र का दर्शन करना चाहिए। रामचरित्र पढ़ेंगे, रामलीला पढ़ेंगे, राम की कथा जानेंगे, तो एक आदर्श मनुष्य को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसका पूरा पूरा लक्षण भगवान राम में है मनुष्य का। यदि वो है भगवान और आपको यह देखना हो कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का कैसा चरित्र होता है, तो उसे आपको कृष्ण का चरित्र देखना। भगवान से कोई पूछा झट से बता देते हैं, कृष्ण कहते थे कि मैं भगवान, अर्जुन को विराट रूप देखा, कोई संकोच नहीं, भगवान भगवान तो अपना प्रदर्शित करते, जब जहां पर जरूरत पड़ता है तो बताते कि मैं ईश्वर हूं। गीता में बार बार भगवान इस बात को कहते हैं, मैं ईश्वर हूं, सारे जगत का कंट्रोलर मैं हूं। तो ईश्वर के करेक्टरिस्टिक को देखना है तो उसे भगवान कृष्ण के चरित्र को देखना चाहिए। और कोई यह जानना चाहता है कि एक आदर्श भक्त का कैसा आचरण होना चाहिए, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु, तीनों भगवान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं, भगवान राम मनुष्य हैं और कृष्ण भगवान है, तीनों भगवान इक्वली तीनों भगवान है। तो भगवान से पूछा जा रहा था कि आप कौन है, हनुमान जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं भगवान होंगे, मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो भगवान अपना परिचय दिए, बड़े गौरव के साथ भगवान अपना परिचय दिए कि मेरा आप परिचय जानना चाहे विप्र, हनुमान जी भी ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र हूं, कोशलेश दशरथ के जाए मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जो अयोध्या के राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूं, हम दोनों पुत्र हैं। हनुमान जी को जिज्ञासा, अयोध्या के यदि आप राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो इस जंगल में यहाँ के आपका प्रयोजन है, जंगल में क्यों भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको तो अयोध्या में रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि हमें पितृ वचन मानि बनाए, पिताजी ने हमको आज्ञा दी है, पिता के वचन को सत्य करने के लिए हम लोग पिता की आज्ञा के अनुसार बन गए। भगवान ने इतना कहा कि हम लोग दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं और हम लोग पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में आए हैं। तो फिर भगवान हनुमान जी को, ठीक है आप नाम भी बता दीजिए, नाम क्या है, तो भगवान बताए नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम मेरा नाम है, राम आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरे बाजू में जो खड़ा है या मेरा छोटा भाई है। और एडिशनल भगवान ने एक और भी बातें बता दी कि हम लोग जंगल से, वो कहने के आप दोनों अयोध्या से आए हैं, दोनों ही से चले थे, साथ साथ चले थे, कहने के हाँ साथ अयोध्या से चले हैं, लेकिन एक और व्यक्ति हमारे साथ था, थी संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारी पत्नी भी साथ में आई थी, सीता भी आई थी। तो हनुमान जी तो वो उसको कहां छोड़ दिए हैं, सीता जी को आप दोनों ही क्यों भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने भगवान पत्र यहां हरि निश्चर वैदेही विप्र फिर हम खोजते ही, हे ब्राह्मण देव, हे विप्र देव, हमारी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है, निशाचरों ने, राक्षसों ने उसका अपहरण किया कर लिया है, तो हमको उसी का अन्वेषण कर रहे हैं। तो जंगल में आने का क्या प्रयोजन है भगवान ने बता दिया। हनुमान जी ने पूछे थे आप क्या हैं, कौन हैं, तो पूरा भगवान ने परिचय बता दिया। मैं दशरथ जी का पुत्र हूं, हम दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से जंगल में आए थे, आए हुए यहां पर हमारी प्रिय पत्नी सीता जी भी थी, परंतु यहां पर राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है, इसलिए उसको ढूंढते हुए हम इस जंगल में घूम रहे हैं, उसी का अन्वेषण कर रहे हैं। भगवान ने कहा आपन चरित कहा हम गाई कहूं विप्र निज कथा बुझाई, तो मैं अपना परिचय बता दिया, लेकिन मेरी भी इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हुई है, विप्र देव, हे ब्राह्मण देव, आप अपने विषय में बताइए, आप कौन हैं और इस जंगल में आप एक ब्राह्मण क्यों घूम रहे हैं, आपका क्या प्रयोजन है। तो हनुमान जी अब तक तो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के नित्य परिकर हैं, भक्त हैं, लेकिन लीला में कम से कम इस अवतार में अब तक भगवान को देखे नहीं थे। भगवान के अन्यतम हनुमान जी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस अवतार में अभी भगवान को वो देखे नहीं थे, सुने थे कि भगवान का अवतार हुआ है, तब पहचान गए, पहचानने में देर नहीं रहा, भगवान के सौंदर्य को, भगवान के प्रभाव को, उनके बातचीत को सुनकर ही वो समझ गए कि ये भगवान है। तो हनुमान जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए और उन्होंने बड़ा खेद पूर्वक भगवान से कहा, हे भगवान, मैं तो एक सामान्य जीव हूं, अल्पज्ञ जीव हूं, ज्ञान से हीन मैं जीव हूं, मैंने तो आपसे आपके विषय में पूछा, इसका तो औचित्य है, मनुष्य हूं, जीव हूं, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या आपको पता नहीं है कि मैं आपका सनातन सेवक हनुमान हूं। तो हनुमान जी चरण पकड़कर रोने लगे। हनुमान जी ने अपने विषय में कोई परिचय नहीं दिया, तो परिचय देने की जरूरत भी नहीं थी, भगवान उनको पहचान लिए। आओ तो इसके बाद हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई, भगवान को कंधे पर ले लिया, हनुमान जी ले लिया अपने कंधे पर राम लक्ष्मण को, और वहां पर बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव जी के पास लाए, सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता हुई, परिचय हुआ। तो मित्रता अग्नि को साक्षी रखकर किया गया था, हम दोनों मित्रता निभाएंगे, अग्नि साक्षी समझते हैं, विटनेस आग को रखा गया था, हम कभी मित्रता भंग नहीं करेंगे। भगवान भी अग्नि जलाया गया था, अग्नि के ऊपर हाथ रखकर, एक तरह से भगवान हाथ रखे थे, एक तरह से सुग्रीव जी हाथ रखे थे, हम कभी भी किसी भी विकट से विकट स्थिति में अपनी मित्रता नहीं नष्ट करेंगे, मित्रता निभाएंगे आजीवन, जब तक जीवन रहेगा हम लोग मित्र बने रहेंगे, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और एक दूसरे की सहायता करना है तो दो काम है, एक तो राज्य से बहिष्कृत थे सुग्रीव जी, उनकी सेवा भगवान को करना था कि पुनः उनको राज्य देना था, उस पर प्रतिष्ठित कराना था, और सुग्रीव जी के लिए भगवान के प्रति कर्तव्य था कि सीता जी का अन्वेषण कराएं। तो दोनों ने सामने हो, ठीक है, भगवान कहे कि निश्चित रूप से आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को मार दूंगा, चाहे कितना भी वो बलवान हो, देवता भी उसकी सहायता करने के लिए आएंगे तो अभी हमारे बाण से नहीं बच सकता है, मैं उसको मार दूंगा, आप उसको चुनौती दीजिए, जाइए नगर में और इसे बदले में जब आप राजा बन जाएंगे तो आप अपने बंदरों को भेजिएगा सीता जी का अन्वेषण करने के लिए। तो उन्होंने वचनबद्ध, सुग्रीव जी ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। तो हो गई दोनों तरफ से प्रतिज्ञा। लेकिन सुग्रीव को भगवान को पूरा पूरा भरोसा नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि बाली का वध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको मन में शक था। तो डायरेक्ट तो कहते नहीं थे, सोचते थे कि मैं भगवान की शक्ति को अपने परीक्षण का विषय बनाऊं या अपराध होगा, लेकिन वो हृदय से शक जा नहीं रहा था। तो बार बार कहते थे कि बाली के बल की प्रशंसा कर दे, बहुत बलवान है, उसके समान कोई नहीं, देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं, बार बार बाली के बल का वर्णन कर दें। तो लक्ष्मण जी समझ गए उसके मनोभाव को कि बाली के मन में क्या शक है। तो बाली से लक्ष्मण जी स्पष्ट कहे, देखो बाली तुम्हारे मन में शक है, सॉरी सुग्रीव तुम्हारे मन में शक है, बताओ हम लोग कौन सा डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे तुमको विश्वास हो जाए कि राम मार सकते हैं बाली को, क्या हमको अपने प्रदर्शन क्या करने, तुमको कैसे हम लोग विश्वास दिला सके, वो हमें करने को तैयार। तो वहां जो राक्षस दुदुम्भी एक राक्षस था जिसको बाली ने मारा था, और जो मार अभी उसको जीवित अवस्था में उसे पकड़ लिया था और पकड़कर उसके भैंसे के रूप में था, इसे घुमाकर फेंक दिया था, तो वह 18 माइल की दूरी पर गिरा था, 18 माइल 27 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। एक तो उसे घुमाना और फेंका तो 27 किलोमीटर 18 माइल जाकर दूरी पर गिरा हुआ था। तो लक्ष्मण जी ने तो हमको क्या करना चाहिए, तो मतलब कि आप उनमें से किसी को मरा हुआ नर कंकाल अभी पड़ा होता हड्डी इसको कोई फेंक देगा तो 18 माइल कम से कम तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह व्यक्ति बाली को मार सकता है। तो भगवान के लिए भगवान ने तुरंत बाण निकाला और उसे मारा बाण तो 90 माइल 18 माइल था 90 माइल दूर जाकर गिर पड़ा। तभी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, सुग्रीव जी फिर भी कहने लगे, लेकिन हाँ जिस समय बाली ने मारा था तो उस समय उसके रक्त और मांस से युक्त भारी शरीर था, अभी तो केवल हड्डी है सूखा हुआ, ये तो कोई भी फेंक सकता है, भगवान राम डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, सूर्य को विश्वास नहीं हुआ, कह दिया कि हाँ आपने फेंक दिया, परंतु उस समय जब बाली ने फेंका था तो इसके रक्त और मांस था, अभी तो सूखा हुआ है, यह नहीं कहा कुछ और, लेकिन शक अपना व्यक्त कर दिया। तो और क्या करना चाहिए, तो वहां 7 ताल के बहुत बड़े वृक्ष थे, 7 एक लाइन से खड़े हुए थे वृक्ष, वो कहा वो कह दिया संकेत किया कि ऐसे ऐसे ताल के जो वृक्ष ने उसको हाथ से उखाड़ लेता था, उखाड़ कर जैसे ऐसे झाड़ देता था, पत्ता झाड़ देता था एकदम एक हाथ से उठा। तो भगवान के ठीक है मैं अभी करता हूं आपको चाहते हैं, तो भगवान बाण निकाले और लाइन से 7 वृक्ष थे, भगवान उस पर बाण मारा, भगवान का बाण किया, एक बीच से उसको पार कर गया बाण, दूसरे को किया, तीसरे को, चौथे, पांचवें, 7वें को पार करके और बाण नीचे गिरा, फिर वहां से आकर तर्कश में आ गया। तब उसे विचार कहा यह व्यक्ति कुछ कर सकते, तब उसको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति मार सकता है, ऐसा बाण की समझ, एक बाण एक ही बाण था पार किया, एक ताल के वृक्ष को पूरा बीच बीच से पार कर गया, दूसरे को, तीसरे को, 7 को पार करके नीचे जाकर फिर वहां से लौट कर आ गया, तर्कश में पुनः भगवान के हाथ में बाण आ गया, तो उसे विश्वास हो गया हाँ यह व्यक्ति। तो मारने की बाली को मारने की प्रक्रिया बची, भगवान ने कहा कि आप जाइए, आप उसको ललकारे जाके नगर में जब आएगा आपके साथ युद्ध करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। सुग्रीव जी गए, सुग्रीव जी गए तो उन्होंने चित्कार किया, कहा मैं युद्ध करना चाहता हूं, बाली तुरंत आ गया युद्ध करने के लिए, बाहर नगर से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आ रहा था तो उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, उनकी पत्नी बाली की पत्नी ने समझाया कि नहीं नहीं वो तो ईश्वर हैं, उनसे बाली जिसका आश्रय, सुग्रीव जिसका आश्रय लिए हुए हैं वो ईश्वर हैं, आप उसे युद्ध मत जाइए, और ईश्वर आप नहीं भी मानते हैं मनुष्य भी हैं तो उनका सामना आप नहीं कर सकते, तो बाली ने कहा कि तुमको चिंता नहीं करना चाहिए, यदि वे ईश्वर हैं तो भी वो धर्म के कारण अवतार लिए हैं, भगवान हैं, वे अन्याय से मेरा वध नहीं कर सकते हैं। उनके साथ मैं युद्ध करूंगा तब वे युद्ध करेंगे, वो हमारा वध नहीं करेंगे क्योंकि धर्म के लिए अवतार लिए हैं, मुझको वो नहीं मारेंगे। उसको विश्वास था। इसके बाद युद्ध चालू हुआ तो बाली में बहुत ज्यादा शक्ति थी, भगवान भी पीछे से थे, वहीं पर देख रहे थे। जब वो आपस में युद्ध करने लगे बाली और सुग्रीव, तो भगवान एक पेड़ का सहारा लेकर छुप कर देख रहे थे। देखते हुए वहां पर कुछ युद्ध काफी समय तक चलता रहा, लेकिन सुग्रीव अब एक बात महसूस करने लगे कि अब मेरा प्राण नहीं बच सकता है, अब युद्ध में मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। तो जैसे तैसे उसे छुड़ाकर भाग गए, भागकर भगवान के पास आए, राम के पास आए, तो राम इतना कठोर बोलने लगे, आपको जब धोखा देना था, आपको बाली को नहीं मारना था, तो आप क्यों हमको भेजा? मैं तो रिस्क लिया, हमारा जान चला गया होता, आपको नहीं मारना था तो हमको क्यों जबरदस्ती भेजा? मैं तो नहीं जा रहा था, आपने कहा कि मैं बाली को मार दूंगा इसलिए मैं गया था। क्या कहा? वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो एकदम आप लोगों को चिंता होने लगी, बाली ऐसा सुग्रीव इतना कठोर भगवान को बोल सकते हैं। तो भगवान ने कहा, राम जी कहे कि बाली सुग्रीव जी चिंता मत कीजिए, नहीं मारने मेरे नहीं मारने का कारण यह है कि मैं अभी बाली को देखा नहीं था, आप और बाली में इतनी साम्य है, रूप में, हाइट में, ब्रेथ में एकदम एक जैसा आप दिखते थे, और यदि कहीं मार दिया, बाण में चला दिया होता और वह बाण कहीं आपको लग गया होता तो भारी अनर्थ हो जाता है, मैं जीवन भर के लिए हमको लोग कहते कि देखिए उसको भेज कर और भगवान मार दिए, मित्रता हमारी टूट जाती, मेरी भारी अपजस अपकृति होगी, तो मैं पहचान नहीं सका इसलिए मैं नहीं बाण चलाया। ये समझ कितना भारी अनर्थ हो जाता, यदि मैं बाण चलाता वो आपको लग जाता तब, क्योंकि मैं तो पहचान ही नहीं रहा, पर आप इतने सिमिलर हैं रूप में, हाइट में, ब्रेथ में, एकदम बिल्कुल सदीखे आप लोग हैं, मैं पहचान नहीं सका, तो मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर भगवान उनके शरीर को टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, स्पर्श करते ही उनका सारा दुख दर्द समाप्त हो गया, भगवान में हाथ में ऐसी क्षमता है, फिर उनमें शक्ति का संचार हो गया। कहा कि ठीक है आप जाइए। लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो, एक क्रीपर लता जिसमें बहुत से फूल थे, फ्लावरी क्रीपर, बहुत से उस पर फूल लगे हुए थे, ऐसा लाकर इनके गले में बांध दो ताकि मैं पहचान सकूं, गला में माला रहेगा तब तो जान जाऊंगा कि जिसके गले में माला है वो क्रीपर है, लता है, वह व्यक्ति सुग्रीव है, और जिसके गले में नहीं है बाली, उसको मारना। तो फिर एक गए, एक झाड़ी लता वहां पर लटका उसमें लगा दिया गया, उसमें थोड़ा सा फूल भी था तो माला जैसा हो गया। जब युद्ध वो कर रहे थे, युद्ध चालू हुआ, कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर से सुग्रीव को लगा कि अब हमारा जान नहीं बचने वाला, लगभग अंतिम स्थिति पर आ गए थे, उस समय भगवान ने बाण निकाला एक पेड़ के छिप पर और उन्होंने संधान किया और वह बाण सीधे बाली के हृदय में लगा और बाली वहां पर गिर पड़ा। भगवान का बाण लगा तो उसको तो सह नहीं सकता था, गिर पड़ा। जब वह गिर पड़ा तो वहां भगवान गए, वह गिर धूल धूसरी दूसरा शरीर हो गया, रक्त रंजित रक्त चारों तरफ से निकल रहा था, धूली और रक्त को मिलकर उसका शरीर बिल्कुल लौट रहा था, चिल्लाहट कर रहा था। भगवान वहां गए तो भगवान को जानता था कि दशरथ जी के पुत्र हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, उसने भगवान को बहुत भर्त्सना किया है बाली ने कि आपको तो बहुत लोग सम्मान करते थे, अब तक बाल लोग बहुत आपका आदर करते थे एक क्षत्रिय के रूप में, लेकिन इस बात को सुनेंगे तो आपकी अपजस बड़ी अपजस होगी, आपकी अपकृति होगी, एक क्षत्रिय को किसी को छुप कर मारना उचित नहीं है। और वह कहा है कि मुझे मरने का कोई भय नहीं है। वाल्मीकि जी को लिखते हैं कि बाली कहता है कि हमें मरने से कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आज इस बात की भारी ग्लानी हो रही थी कि आप जैसे पापी व्यक्ति के हाथों से मैं मारा गया हूं, एक क्षत्रिय होकर छुप कर किसी को हमको मारा है, आप हमारे सामना सामना मारते, आपका बाण लगा हो तो बड़ी हमें प्रसन्नता हुई, मैं स्वर्ग में जाता, लेकिन आप ऐसे कायर व्यक्ति के साथ बाणों से मैं मारा गया हूं, क्षत्रिय के जो मोरालिटी है, कोड है, उसका एकदम वायलेशन करके आपने हमको मारा है, तो आपकी तो अपजस होगी और मैं नरक में जाऊंगा, इसीलिए हमें इसकी भारी चिंता है। भगवान को खूब भर्सना किया, भगवान को खूब उसने कहा है, आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो एकदम साफ कहता है कि आप पापी, तुमने हमको मार दिया, छुप कर मारा, लेकिन अन्य ग्रंथों में थोड़ा सुधार कर बताया गया, धर्म हेतु अवतर हूं गोसाई, मार हूं मोहि व्याध किनाई। हे भगवान, आप तो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ना, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। आपकी यह प्रतिज्ञा है, सनातन प्रतिज्ञा है कि आप धर्म की स्थापना के लिए यहां अवतार लेते हैं। धर्म हेतु अवतरह गोसाई, मारो मोहि व्याध की नहीं, व्याध के समान, हंटर के समान, बधिक के समान हमारा आपने वध किया है, यह उचित नहीं है। फिर पूछ रहा कि हम तो दोनों भाई हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, हमको आप क्यों मारे, और हम आपको तो सम व्यवहार कर समदर्शी होना चाहिए, आप समदर्शी हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों को बराबर नजर से देखना चाहिए, लेकिन एक भाई के प्रति आप पक्षपात कर रहे हैं और हमारे हमको मार रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं, हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा आपने क्यों किया। फिर इसके बाद वह देखा कि अब तो शरीर छूटने ही वाला है, ये भगवान है, इनको भगवान के चरणों को पकड़ लिया और अपने उनसे क्षमा की याचना किया कि मैंने आपसे कुछ अपशब्द बोला, अब तो मैं अंतिम विदा ले रहा हूं। भगवान को दया आ गई, अब तक तो भर्सना कर रहा था, नहीं पहले भर्सना कर रहा था, भगवान भी कहे कि तुमको मार देना है उचित था, तो किस व्यक्ति का वध कर देना चाहे, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसुत कन्या समय चारी, चार पर जो कुदृष्टि करता है उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी और बहन और अनुज वधु भगनी छोटे भाई की पत्नी और भगिनी, भगिनी मतलब बहन, और अपने पुत्र की जो पत्नी होती है वह, और अपनी कन्या, यदि इसको कोई भी व्यक्ति कुदृष्टि से खराब नजर से देखता है तो उसको वध कर देने में पाप नहीं है। भगवान औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव है, सुग्रीव अभी जीवित है, और फिर उस अवस्था में तुमने उसकी पत्नी को दूषित किया हो, रूमा को तुम पत्नी बनाकर रखते हो, तुमको मारने में क्या दिक्कत है, और तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं था कि सुग्रीव ने मेरा आश्रय लिया हो, मेरे आश्रित जानकर भी तुमने उसको मारने का प्रयत्न किया, इसे तुमको मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं। तो भगवान चुप कर दिया अपने लॉजिक से, जितना वह कठोर बोला था तो उसके ज्यादा भगवान कहे तुमको मारना एकदम उचित था, तुमको मार ही देना चाहिए। इसके बाद क्षमा याचना करने लगे बाली कि भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, आपके साम का मैं क्या जवाब दे सकता हूं, आपके बुद्धि के समान मेरी बुद्धि काम नहीं कर सकती है, क्षमा कीजिए मैंने आपको एक कठोर शब्दों का प्रयोग किया, आप ईश्वर हैं, आपने ठीक ही किया, आपने किया तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि बाली ठीक है, तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं जीवित कर सकता हूं। भगवान ने तुरंत उसके बाली के शरीर का स्पर्श किया तो सारा दुख उसका समाप्त हो गया, दर्द समाप्त हो गया, और भगवान ने कहा कि आप यदि शरीर रखना चाहते हो, जीवित रखना चाहते हैं तो मैं जीवित कर सकता हूं। अचल करूं तन राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जीवित रहना चाहते हो तो मैं जीवित। तो बाली ने एक बात कही है, इस बात को लगभग सब लोग जिसको भगवान ने मारा है लगभग कहते हैं बाली ने कहा कि भगवान यदि इस समय मैं अपने प्राण का उत्सर्ग नहीं करूंगा, यह जो हमारे लिए इतना सुंदर अवसर है, इतना सुयोग है, इस अवसर पर मैं अपने शरीर का परित्याग नहीं करूंगा तो लोग हमको महान मूर्ख समझेंगे। बड़े योगी लोग, महात्मा लोग, मुनि लोग तपस्या करते रहते हैं, जन्म जन्म तक तपस्या इसीलिए करते रहते हैं कि अंत में आपका नाम उनके जीह पर आ जाए। सारी तपस्या इसीलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अंत में शरीर छोड़ने के समय क्या होना चाहिए, हमारे जीह पर भगवान का नाम होना चाहिए। इसी इंद्र के लिए, इसी लक्ष्य के लिए तपस्या करते रहते हैं। मेरा आज कितना सौभाग्य है कि आपका नाम तो मैं ले ही रहा हूं, आपके नाम का उच्चारण कर रहा, आप साक्षात स्वयं हमारे सामने खड़े हैं, तो इससे शरीर छोड़ने का अच्छा अवसर क्या हो सकता है। मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूं, आप कृपा करके हमें अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए और मैं इस शरीर का परिवर्तन करना चाहता हूं। तो उसी समय बाली की मृत्यु हुई और फिर भगवान सुग्रीव जी को प्रसन्न किए, सुग्रीव जी को बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद भगवान ने कहा सुग्रीव जी के जो श्राद्ध कर्म है, अंत्येष्टि क्रिया संस्कार आप लोग कर दीजिए। और फिर इसके बाद सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ। भगवान नहीं गए थे, राज्याभिषेक में भगवान शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि राजधानी में हुई और भगवान की प्रतिज्ञा थी कि 14 वर्ष तक मैं किसी गांव में अथवा शहर में नहीं जाऊंगा। भगवान पर्सनली नहीं गए थे, लक्ष्मण जी जाकर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कराए। राज्याभिषेक के बाद बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया, विशेष श्रावण और भादो जो विशेष जो बारिश के मौसम है, तो उस समय सर्च का जो काम था, सीता का अन्वेषण का, उसको पोस्टपोन करना पड़ा कि चारों तरफ वर्षा हो रही थी, घास छा गया था। भगवान पर्वत की एक विशिष्ट गुफा में लक्ष्मण जी के साथ प्रतीक्षा करने वहां निवास करने लगे और सुग्रीव पूरा फूल फलित राजा हो ही गए। अब पूरा और अपना राजकाज संभालने लगे, भगवान को भूल ही गए। उन्होंने जो वचन दिया था कि मुझे सीता का अन्वेषण करना, पूरा भूल गए, एकदम पूरा अपने राजकाज में स्त्रियों के साथ बच्चों के साथ उसी में लग रहे थे। भगवान कौन है कुछ पता था। कुछ दिन के बाद हनुमान जी एक दिन समझाने का प्रयत्न किए कि आप प्रतिज्ञा किए हुए हैं, मित्र को जो वचन दिया जाता है वह आपको कहे उसके पहले उसी सहायता आपको करनी चाहिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उस दिन इतना वो शराब पिए हुए थे, इंटॉक्सिकेटेड थे सुग्रीव, कि वो हनुमान जी को पहचान भी नहीं सके। हनुमान जी को कहने लगे क्या बक रहे थे, ये खुद वो बक रहे थे सुग्रीव, लेकिन इतना ओवर इंटॉक्सिकेटेड थे, क्या मैंने किया, राज दिला दिए, कौन सा बड़ा भारी काम किए, हमारा ही तो राज था, ऐसे इंटॉक्सिकेटेड। हनुमान जी तो बड़े चक्र लगे, अब क्या किया, प्रतीक्षा करने लगे कि जब थोड़ा सा इसका नशा कम होगा तब समझाऊंगा। तो फिर नशा कम हुआ था तो कहे तो कहे कि हाँ वो ठीक है, हमें सहायता करनी चाहिए। उनकी कृपा से उन्होंने बाली को मार दिया। देखो कितना एक तरफ अधर्म, हमारे लिए अधर्म भी किया, छुप कर व्याध के मारा, तो हमें भी सहायता करनी चाहिए। लेकिन अभी अब मैसेज हनुमान जी वहां तक पहुंचा नहीं से, कुछ करना चाहिए, कुछ बातें हुई नहीं थी। तब तक एक दिन राम जी वहां प्रतीक्षा कर सीता जी के विरह में, भगवान का तो ऐसे ही दिन बीत रहा था, तड़प रहे थे, दुख में थे। भगवान को क्रोध आया, तो कहे कि लक्ष्मण जाओ मारो उस बदमाश को, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया और एकदम भूल ही गया। लक्ष्मण जी वहां आए, या फिर भगवान ने जाते समय लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दिए थे कि मार दो एकदम कंप्लीट, ऐसा मित्र नहीं चाहिए, धोखाबाज हमारी सहायता नहीं करता। तो लेकिन फिर मैं लक्ष्मण जी तैयार हो गए, ठीक है मैं तो सबक सिखा कर आ जाता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, जानते थे लक्ष्मण के स्वभाव को, भगवान ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा धमकाना और उसे समझा बुझा कर लाना, मित्र है, कुछ भी है, गलती भी करता है तो अपना मित्र है। लक्ष्मण जी वहां गए तो प्रहरी लोग थे उसको बताए, जाकर बताए अंदर में कि लक्ष्मण जी आए हैं और बड़े क्रोधित जैसा दिख रहे हैं। फिर वह इंटॉक्सिकेटेड दूसरा डोज ले लिया था फिर से। और तो सुग्रीव कहता है कि क्या करेंगे लक्ष्मण, जाओ कह दो, समय आएगा तो मैं सहायता करूंगा ना, अभी क्या बहुत जल्दी पड़ी है, लक्ष्मण है क्या कर लेंगे हमारा। ये लोग तो बंदर तो घबराने लगे कि अरे भाई ये क्या करेगा, हनुमान जी भी वहां सुन रहे थे, हनुमान जी भी अब तो चल के अब तो काम बना हुआ काम तो बिगड़ नहीं जाए, लक्ष्मण लक्ष्मण है तो सारी पृथ्वी को समाप्त कर दे, इसके में क्या। तो जैसे तैसे कहे कि लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी समझाए बुझाए कि लक्ष्मण जी हैं अब ऐसा करना है, तो उसको थोड़ा सा होश आया तो ठीक है कह दो कि मैं ऐसा सहायता करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी से थोड़ा अच्छी बात ही किया, लेकिन एकदम वो इंटॉक्सिकेटेड थे। वाल्मीकि रामायण में खूब वर्णन किया कितना वो क्या क्या करता था, तो सुग्रीव जी करते थे। इसके बाद धीरे धीरे उनको ठीक हुए तो भगवान के पास आए और सीता का अब अन्वेषण करना है। अन्वेषण करने के लिए सुग्रीव जी, यदि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन किया गया है लेकिन हिंदी के अन्य कवियों ने यह सब नहीं कहा है, इतना ही कहा है कि थोड़ा राज्य पाकर थोड़े समय के लिए क्षणिक काल के लिए बेचारे भूल गए थे, लेकिन जो ही उनको याद आया लक्ष्मण जी आए तो उसी समय एकदम दौड़े हुए भगवान के चरणों में आकर गिर पड़े, भगवान से क्षमा मांगने, भगवान हमसे देर हो गई, आप जानते हैं आपकी माया है, हम लोग जीव हैं, क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं क्षमा कोई बात नहीं, क्षमा कर दी, तुरंत सेन भेजा गया। अब विभिन्न दिशाओं में हजारों हजारों बंदरों को भेजा गया कि पता लगाना है, सीता जी का पता लगाना है। तो विभिन्न दिशाओं में बंदर गए, लेकिन साउथ में लंका के तरफ एक विशिष्ट ग्रुप गया था, उस ग्रुप में हनुमान जी थे, बाली के पुत्र अंगद थे, जाम्बवान थे, और भी बड़े बड़े जो उस सेना के उस बंदरों में सबसे जो श्रेष्ठ लोग थे वो लोग थे। और भगवान ने हनुमान जी को दिया था अंगूठी अपना दिया था कि भाई सीता जी मिलेंगी, तो सीता जी को कैसे विश्वास होगा कि अभ्यक्ति जो आया हुआ है भगवान का दूत है, उनको सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी को उन्होंने दिया था। तो दक्षिण दिशा में लोग बढ़ रहे थे, गए गए समुद्र के तट पर आए, चारों तरफ बंदर लोग घूम रहे थे, गुफाओं में जा जाकर ढूंढते थे, पर्वतों पर जाते थे, कंदराओं में जाते थे, वृक्षों की घाटियों में जाते थे, कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। और सुग्रीव ने एक समय दिया था कि इस निर्धारित समय में यदि तुम लोग पता करके नहीं आओगे, जे यहां आओगे तो तुम सबको मैं मार दूंगा, आना है तो पता लगा कर आना है, बिना पता लगाए यदि तुम लोग आ गए तो जान से मारे जाओगे, यह थ्रेट हनुमान सबको। हनुमान ढूंढ रहे थे और ऐसे अंगद इत्यादि ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिले, सीता जी का पता नहीं लगा और समय भी अब बीतने जा रहा था, तो कुछ लोग कहते थे कि अब चलें लौट चलें, लेकिन अंगद कहते थे कि ना लौटने पर वो सुग्रीव हमको छोड़ें, कम से कम हमको तो जरूर मार देंगे, मुझसे तो उनका बैर है, ऐसे भगवान के आग्रह में हमारे वो चाचा हैं हमको छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं उनके नजर में खटकता रहता हूं, उनको भय बना रहता है कि मैं कहीं राज्य के लिए उपद्रव न करूंगा, तो हमको तो कोई बहाना वो ढूंढते ही रहते हैं, और ऐसे जाने पर हमको मार देंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा बस। तब दूसरा कहेंगे जो जाएगा तो मारेंगे, तो देखिए अब तो मरना तो है ही। तब वो लोग एक जगह उपवास करके बैठ गए, मरना है तो उसकी चटाई बिछा दिए समुद्र के तट पर पहाड़ के नीचे, और सोचे कि भगवान का काम नहीं हुआ तो हम लोग उपवास करते सब लोग प्राण छोड़ दें, कि जाएंगे तो बाली मारते सुग्रीव मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि उनके हाथों से क्या मरना, हम यहीं पर उपवास करेंगे। और तो जो लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग उपवास करके यहाँ पर शरीर त्याग करेंगे, तो उसी पर्वत के ऊपर एक दूसरा पक्षी रहता था, वो भाई था जटायु का, संपाति नाम था ना, वो सुंदर। तो वो बेचारे की ऐसी स्थिति थी कि उसके पंख नहीं थे, जल गए थे, तो पंख जल गए थे, कहीं उड़ नहीं सकता था, तो फिर भी उसे वरदान प्राप्त था कि दिन के समय कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जाएगा तो तुम वहां उनको पकड़कर खा सकते हो, तुम्हारे चंगुल से बाहर नहीं जाएंगे। फिर भी वो सुना कि बातें कर रहे हैं, कुछ बंदर लोग बातें कर रहे हैं कि अब उपवास करके मरने वाले हैं, तो उसको बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि अब तो बहुत दिन तक हमें भूखा था, कई लोग बंदर मर जाएंगे, कई एक हैं, कई एक बंदर हैं मरेंगे तो महीनों तक, कई एक साल भर तक हमारा भोजन चलता रहा बिना प्रयास का, तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो आया और कहा कि वो कहने लगा खुशी में कि बहुत दिन तक आहार नहीं मिला, आज भगवान ब्रह्मा जी हम पर खुश हुए हैं, हमको आहार दे दिए हैं, बंदर लोग मरने वाले हैं उनको खाऊंगा, मारने को नहीं सोच रहा था, मर जाएंगे तो मैं सब ही खाऊंगा। तो वो लोग बंदर लोग सुने, तो बंदर लोग सुने तो ऐसे तो मरने जा रहे, तो उनको अब भारी भय इस बात का हुआ कि मृत्यु के समय गिद्ध कहते हैं फलचर, एक अशुभ पक्षी की आवाज सुनकर वो देखना नहीं चाहते, घर पर बैठ जाते हैं, फलचर को लोग पानी छिड़ी कर शुद्ध करते हैं, ये तो मरने के समय अब तो बड़ा अपशगुन होगा, पता नहीं, तो जान तो जा ही रहा, एक एडिशनल विपत्ति आ गई। तो वो लोग अब शोक विभूत विभोर होकर कहने लगे कि अरे भाई हम लोगों का जीवन व्यर्थ चला गया, भगवान का काम भी नहीं किया और एक गिद्ध तो खाई जाएगा, मृत्यु भी होगी। अच्छा सौभाग्य था वो जटायु का कि वह अच्छा व्यक्ति था कि भगवान का कार्य करते करते वह मर गया, भगवान का कार्य किया और भगवान के सामने उसकी मृत्यु हो गई, तो वह धन्य था, हम लोगों का जीवन तो बेकार चला गया। तो जो पक्षी था संपादि वो सुना ये लोग बातें कर रहे हैं हमारे भाई के विषय में, तो नजदीक आ गया, क्या उसके अभी सुन रहा था उसकी मृत्यु हो गई, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे घसीटते हुए आ गया और कहा कि आप लोग बातचीत कर रहे हो जटायु के विषय में, उसको कैसे जानते हो, कौन है, तो बताए कि हाँ वो एक पक्षी था, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा ऐसा हो गया, भगवान राम के हाथ के सामने उसकी मृत्यु हो गई, भगवान ने अंत्येष्टि क्रिया किया, ऐसा ऐसा पूरा राम कथा बता दिए। तो उसको संपाति को तुरंत पंख आ गया, नया पंख उड़ने लगा, कहा कि अरे हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, अब तक तो मेरा पंख जल गया था कि जब आपके भगवान राम के दूतों के साथ आपकी वार्तालाप होगी तो आपके पंख निकल आएंगे, तब तो तुरंत पंख आ गया। वो कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अब आप लोग को मैं नहीं खाऊंगा, आप तो हमारे राम के दूत हैं, भगवान के दूत हैं, तो उनके सेवक हैं, तो आप लोगों को मैं नहीं खाऊंगा, आप बताओ मैं आप लोगों क्या सहायता कर सकता हूं। तो बताए कि हम लोगों को सीता का खोज करना है, अब दिन बीत चुका है, पता नहीं लग रहा है। तो संपाति ने कहा कि मैं यहीं से देखता हूं, मैं देखा हूं तुम ना गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, देखने की क्षमता उस पक्षी में बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर का देख सकते। तो उसने कहा कि मैं यहीं से देखता हूं, सीता लंका में है और मैं आप लोगों की सहायता कर सकता था, वृद्ध भय भय उन्नत करता हूं कछु कुछ सहायता हूं, जब हम अब तो वृद्ध, मैं अब तो नया पांख भी आ गया तो वृद्ध शरीर है, उठ तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं सहायता करता, आप लोग निराश मत हो, यदि तुम लोगों में किसी में क्षमता है समुद्र को पार करने का तो यहीं से मैं दिखा सकता, देख मैं तो, तुम तो नहीं देख सकते लेकिन लंका में सीता जी है, रावण के नगरी में है सीता जी, लेकिन वही पता लगा सकता है जो समुद्र में को पार कर सके। यह भी एक भारी विपत्ति थी, सब लोग विचार करने लगे, सब लोग अपने अपने बल के विषय में विचार करने लगे कि मैं कितना छलांग लगा सकता हूं। तो एक जाम्बवान थे, वो ही बहुत दौड़ते थे, कहा जाता है कि जब भगवान वामन का अवतार हुआ था तो भगवान वामन का जो विराट रूप बना था ना, बलि महाराज के जगह में भूमि नाप रहे थे, तो उस विराट रूप को 7 बार प्रदक्षिणा दौड़ कर दिए नॉन स्टॉप। तो वो कहे कि हमारी तो शक्ति थी लेकिन अब वृद्ध हो गया हूं, उतना तो काम नहीं, मैं समुद्र में पार करना, मैं बीच में ही गिर जाऊंगा, छलांग लगा बीच में ही गिर जाऊंगा, पार नहीं कर सकता। अंतिम अंगद कहे कि मेरी क्षमता है कि मैं इधर से पार तो कर जाऊंगा, लगाऊंगा छलांग जा रहा हूं, लेकिन मन फिरती कछु मन संशय कछु फिरती वाले, उधर से आने में मुझे शक है। तो मैं जाऊंगा अभी उधर से नहीं लौट पाऊंगा तो समस्या यह आएगी। और इसके तरह से उनका कुछ मंदोदरी के साथ माता का संबंध था, मंदोदरी उनका पालन पोषण किया था, मंदोदरी के दूध से जामवान का भी कुछ पालन पोषण हुआ था। इधर से तो मैं चला जाऊंगा, कहीं मेरी माँ से मंदोदरी से भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, वो हमको रोक लिया तो उसके स्नेह बंधन में पड़े आ नहीं सकता हूँ। तो विचार कर कौन पार कर सकता है, कौन पार कर सकता है, तो कोई जामवान ही कहे कि हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हैं, वायु देवता के पुत्र हैं, आप में तो असीम क्षमता है, आप पार कीजिए। हनुमान जी तैयार हो गए और जानते हैं वैदिक ग्रंथों में रामायण में वर्णन किया कि हनुमान जी वहां गए, हनुमान जी छलांग लगाए और पहुंच गए। इस समय तो जो तथाकथित लंका है और इंडिया की सीमा, वो ज्यादा देर तक समुद्र नहीं है, बहुत कम है, अभी दूरी कम है। उस समय उसे वर्णन किया जा रहा है कि 100 योजन, 100 योजन मतलब कि 800 माइल 1200 किलोमीटर दूर था, अभी बहुत नजदीक है। हनुमान जी पार कर गए, एक पर्वत पर गए, छलांग लगाए और उधर चले गए। तो वहां उन्होंने सीता जी का पता लगाया, बहुत विस्तृत वह वर्णन है, पता लगाकर आए। फिर राम जी को उन्हें संवाद दिया, फिर संवाद देने के बाद भगवान आ गए समुद्र तट पर, और एक विशिष्ट जो नल और नील विशिष्ट बंदर थे उनकी सहायता से वहां पर पुल का निर्माण हुआ, भगवान पुल से पार किए और राम और रावण के साथ युद्ध हुआ। भगवान राम के साथ, भगवान राम की सेना के साथ रावण के सेना का युद्ध हुआ, उसमें सभी राक्षस लोग मारे गए, रावण भी मारा गया। जब रावण का वध हो गया तो भगवान कहे, पहले वहां पर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि राज्याभिषेक भगवान ने किया विभीषण का, विभीषण का राज्याभिषेक करने के बाद विभीषण जी को भगवान कहे कि जाकर सीता जी को पता बता दो, अब अशोक वाटिका में आप बता दीजिए कि रावण का वध हो चुका है और भगवान विजयी हो चुके हैं। तो विभीषण जी गए, हनुमान जी भी साथ है, हनुमान जी गए, हनुमान जी और भीषण जी गए जाकर बताए कि राम जी ने संदेश भेजा है, रावण का वध हो चुका है, आपको अब चिंता नहीं करनी चाहिए। और भगवान ने यही पूछा है कि पूछा ना, जब सीता का कोई संदेश है, कोई मैसेज है तो हमारे पास ला देना। तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई संदेश है तो बताए, हम भगवान को पहुंचा दें। इसे सीता जी को बहुत इसे दुख की बात है, संदेश क्या, हमको बुला ही लेना चाहिए कि संदेश क्या। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी सीता जी ने कहा कि बस एक ही संदेश भगवान से कहिए कि मेरे जीवन में उनको मैं देखना चाहता हूं, उनके चरणों को देखने की उत्कट इच्छा है बस। यह तो आकर बताया गया संदेश कि सीता जी यह कह रही हैं कि आपको देखना चाहती हैं। भगवान ने पुनः संदेश भेजा, ठीक है सीता जी को लाया जाए। तो सीता जी को ला रहे थे पालकी में, भगवान ने संदेश दिया था कि आप बढ़िया से अब वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर स्नान करके सीता जी यहाँ आए। तो जब सीता जी आए तो बंदर लोग पहले पाल देखे थे नहीं थे, बंदर लोग को सीता जी को देखे नहीं थे, कितनी उत्कट इच्छा थी, उनकी माँ है, भगवान राम की पत्नी, उनको देखना है, तो चारों से भीड़ लगाए हुए थे। तो किस तरह व्यवस्था किया जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था, उनको लाखों लाखों संख्या थी। भगवान ने कहे कि नहीं, हटाने की जरूरत नहीं थी, इनका अधिकार है, ये लोग काम किए हैं सेना में, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के सहयोग से मैं सीता को प्राप्त किया हूं, तो उनको देखने दिया जाए। सीता जी कुछ दूर थी तो उनको कह दिए भगवान की दूर से पालकी से उतार देना चाहिए, पैदल आना चाहिए। तो सीता जी वहां आई तो सीता जी तो बहुत प्रसन्न थी, कई एक महीनों के बाद भगवान का दर्शन हुआ है, रावण के चंगुल से छूट गई हैं, बड़ी प्रसन्न सीता जी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन राम के चेहरे को देखी तो राम बहुत दुखी थे और क्रोधित जैसा दिख रहे थे, दुख और क्रोध से भगवान राम का चेहरा अभिभूत था। और सीता जी आकर भगवान को प्रणाम की, प्रणाम कर दूर से ही भगवान बड़े क्रोध से और दुख से भगवान ने कहा कि सीता जी, सीता जी अब नहीं कह रहे थे, सीता मैं एक क्षत्रिय हूं, तुम मेरी पत्नी थी, तुम्हारा अपहरण हुआ था इसलिए मेरा एक कर्तव्य था पत्नी की रक्षा, और रघुवंश पर भारी कलंक था कि किसी रघुवंशी की पत्नी का अपहरण हो चुका है तो उसको हमें रावण से बदला लेना था। रावण ने एक रघुवंशी के किसी स्त्री का अपहरण किया तो उसको फल मिल गया, मैंने बदला ले लिया, उसको पाठ पढ़ा दिया, सिखा दिया, उसका वध कर दिया, और तुम मेरी पत्नी इसलिए तुम्हारा भी मैं उसे चंगुल से छुड़ा दिया, तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मेरा जितना था उतना करना ही चाहिए था किया। अब तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो लक्ष्मण, भरत अथवा शत्रुघ्न किसी से विवाह करना चाहती हो तो मैं कुछ आपत्ति नहीं है, अन्यथा किसी से भी, मैं मेरे तरफ से तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि अभी हो नहीं सकता है कि रावण जैसे जघन्य कुकर्मी व्यक्ति के कस्टडी में इतने दिन से तुम हो तो तुम्हारी पवित्रता पर हमें संदेह है, मैं तुमको किसी भी कीमत पर पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तुमको जहां जाना हो जा सकती हो। ये बंदरों के साथ, हनुमान जी के साथ और भगवान का चेहरा गंभीर रूप से कह रहे थे, एकदम इतना भगवान का क्रोध, भगवान का वह चेहरा क्रोध से और दुख से अभिभूत था। आपने सीता जी के हृदय में जो बातें बीती, सीता जी जो सोचती होगी, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन अनुमान करना वर्णन करने की अपेक्षा कुछ आसान है। आप समझ सकते हो कि सीता जी की क्या स्थिति हुई होगी। सीता जी ने बहुत, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सीता जी का बहुत भारी वहां पर विलाप है, सीता जी भी उसी स्वर में राम को डांटती हैं कि यदि आपको कहना तो मैसेज भेज देना चाहिए था कि आप मुझे स्वीकार नहीं करते, इतने हजारों हजारों लोगों की तो मृत्यु हुई है, इसके आप दोषी हैं, राक्षस लोग मारे गए, यह कि मैं पहले ही प्राण त्याग देती लेकिन आपके कारण, आपको नहीं स्वीकार करना चाहिए उसी समय भेज देना था खबर, मैं जीवित नहीं रहती थी लेकिन मैं इतना दुख में रही, इतने राक्षस लोग मारे गए, रावण का वध हुआ, सब कर्म हुआ, वध करना पड़ा आपको, इसी कारण से आप पहले क्यों नहीं बता दिए, अगर कुछ भी हमें विलंब हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन यह बस जहां तुमको जाना, मेरी तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता तुमको है। हनुमान जी एकदम क्रोधित हो गए भगवान पर, सभी लोग जितने बंदर थे भगवान पर क्रोधित हो गए, सुग्रीव को देखते भगवान आप क्या क्या पागलपन आप में हो गई है, आप क्या पागल हो गए हैं, सब लोग भगवान को टूट पड़े, बोलने लगे, लेकिन भगवान सबको कह गए नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, अपने धर्म का पालन करूंगा, सीता को न किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता, ये तो अपने तरह से बिल्कुल गंभीर थे, हो नहीं सकता है, इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहां पर देवता लोग भी आ गए, कहने लगे कि नहीं आप यह क्या कर सकते हैं, भगवान है ये सीता आपकी हलादनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंशियल, इसमें दोष हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये क्या आप करते हैं भगवान, लेकिन एकदम थोड़ा सा भी बच नहीं कर, थोड़ा भी पीछे नहीं आ रहे, ये नहीं स्वीकार कर, बार बार कह रहे थे क्या भरोसा, इसकी पवित्रता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, कैसे विश्वास किया जा सकता है कि रावण कोई भी स्त्री वैदिक काल में एक दिन भी दूसरे पति के घर के अतिरिक्त रह जाती थी, उसको स्वीकार नहीं किया जाता था एक महीनों तक, और रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति के कस्टडी में उसके नगर में रही है, इसको मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो यह क्वेश्चन उठने लगा कि सीता के सतीत्व पर, उसकी पवित्रता पर क्वेश्चन उठने लगा, और स्वयं भगवान राम द्वारा। तो सीता जी ने ही कहा कि ठीक है, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी ठीक है, मेरा यही है उपाय है, अब कुछ भी नहीं करने की बात है, लक्ष्मण आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो सीता जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण अग्नि प्रज्वलित करो, तो कैसे लक्ष्मण जी कैसे आग, राम की तरफ देखा तो राम ने ठीक है करो, ऐसे लोग जलना ही चाहिए, तब भगवान भी आग कह ही रहे हैं, सीता जी आगाह कर रहे थे, लक्ष्मण जी अग्नि काष्ट जुटा कर उस अग्नि, अग्नि जब प्रज्वलित हुई, अग्नि छोटी अग्नि नहीं थी, बहुत बड़ा काष्ट इकट्ठा कर अग्नि प्रवेश किया, और सीता जी को उसमें प्रवेश करना था, कपड़ा पहने जिस अवस्था में उसमें प्रवेश करना था, यदि अग्नि के थोड़ा भी उनका कोई भी एक एक धागा भी साड़ी का जल जाएगा तो यह समझा जाएगा कि सीता जी अपवित्र हैं, दूषित हैं। तो सीता जी उसने प्रवेश की, प्रवेश जब कर दी तो उसके बाद ब्रह्मा जी और बड़े बड़े शिव जी और सभी देवता लोग घबराए हुए आ गए। भगवान राम को पूछे, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, में क्या ये क्या पागलपन हो रहा है, सीता जी के प्रति, सीता जैसी पवित्र स्त्री के प्रति आप शक कर रहे हैं, उसे संदेह कर रहे हैं। तो इसके बाद जब सीता जी अग्नि में प्रवेश की, इधर तो बंदर लोग तो रोने लगे, बस प्रवेश की मत लगी, अब सीता जी तो गई काम, मृत्यु हो जाए, सब लोग रो रहे थे, सभी बंदर हनुमान जी रोने लगे, क्या क्या सारा उद्योग निष्फल हो गया। भगवान के चरित्र पर लोग शंका करने लगे, हम तो जानते थे कि बड़े सुशील हैं, लेकिन आज तो इनका फूल ही खुल गया, तो अच्छे व्यक्ति नहीं निकले। इसके बाद अग्निदेव, साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए सीता जी को लेकर, और अग्निदेव ने सबके सामने, अब तो बड़ी बड़ी भारी सभा, बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, सब लोग, यहाँ तक कहा जाए दशरथ जी वहां आ गए थे, वैकुंठ से दशरथ जी वहां प्रस्तुत हो गए थे, और सबके सामने एक बहुत बढ़िया वाल्मीकि रामायण जी प्रवचन दिया अग्निदेव ने सीता जी की पवित्रता के विषय में, कि सीता जी सर्वथा निर्दोष है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति यदि वह सीता जी के चरित्र पर शक करेगा, आशंका करेगा, वह करोड़ों करोड़ जन्मों तक नरक में पड़ा रहेगा। सूर्य अग्निदेव ने एक बार प्रवचन किया तो सब लोग शांत, तब तो विश्वास हो गया, भगवान राम तुरंत सीता जी को अपने हृदय से लगा लिए, बड़े प्रेम से हंसने लगे, और भगवान कहे कि मैं इसे पहले भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन जब मैं बिना परीक्षा लिए सीता जी को स्वीकार करता तो मैं तो स्वीकार करता, लेकिन दुनिया के लोग को तो विश्वास नहीं होता, लोग यही कहते, इसीलिए सबको विश्वास हो जाए इसलिए मैं ऐसा किया था, अन्यथा हमें सीता जी से पवित्रता तो कोई संदेह नहीं। बड़े प्रसन्नता के साथ फिर वहां से पुष्पक विमान से भगवान आए, अयोध्या आए, तो फिर भगवान का यहाँ पर राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ। भरत जी ने भगवान का स्वागत किया और इसके बाद भगवान को राज्य पर अभिषिक्त किया गया। यहीं तक वर्णन करते हैं, हम ऐसे सोच रहे थे कुछ राम राज्य के विषय में कहें, परंतु वह तो नहीं हो सका। तो भगवान ने सीता जी का अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, अग्नि में परीक्षा सीता जी को देनी पड़ी थी। इसके बाद आप लोग जानते होंगे वाल्मीकि रामायण में अथवा श्रीमद् भागवतम में भी सांकेतिक रूप से वर्णन है कि ये सब होने के बाद भी, ये सब हुआ था अयोध्या में, क्या कहते हैं, विवाद अफवाह फैल ही गया, एक व्यक्ति कहना चालू किया और बहुत लोग कहना चालू कर रहे थे, राम पर दोषारोपण कर रहे थे। तो भगवान ने प्रजा के रंजन के लिए सीता जी का परित्याग कर दिया था, पुनः सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास की थी, वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था, तो भगवान ने सीता जी का पुनः परित्याग कर दिया था, और यह परित्याग हमेशा के लिए कर दिया, फिर स्वीकार नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान ने थोड़ा ही प्रतिकार नहीं किया। आप लोग जानते हैं ना, एक धोबी अपनी पत्नी को एक दिन डांट रहा था, रात्रि के समय भगवान देखना चाहते थे, भगवान राम ही छद्म भेष में घूम रहे थे कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई किसी को कष्ट नहीं है। एक जगह भगवान राम रात्रि के समय थे तो एक धोबी था अपनी पत्नी को डांट रहा था, और डांट रहा था तो कह रहा था कि देखो तुमको मैं अपने घर में नहीं रख सकता, तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं राम जैसा नीच व्यक्ति नहीं हूं। उसकी पत्नी वो कई एक महीने तक रावण के पास रही, फिर भी अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया, मैं उतना मतलब कि गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। आप वो बात कर रहा था घर में, भगवान हम सुनने थे बहुत, और अब क्या किया जाए। तो वह एक दूसरे और से कहा तो भगवान कहे कि ठीक है, प्रजा का पालन करना चाहिए, कि प्रजा के मन में किसी प्रकार का उनके मानसिकता और उनके शरीर हर एक तरह से उनकी रक्षा करना होता है, राजा का कर्तव्य होता है। तो सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया, लक्ष्मण जी से कह दिया, लक्ष्मण जी से कह दिया जाकर जंगल में छोड़ा, तो लक्ष्मण जी सीता जी को रथ पर बैठा कर ले जाकर वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा। जिस समय सीता जी गर्भवती थी उनके उदर में बच्चे थे, बच्चा बच्चे थे और उस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़े। यह भगवान का एक अजीब अन्यतम चरित्र है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया था, जैसा हम कल चर्चा किए थे, थोड़ी चर्चा किए थे कि अरे सभी साधु महात्मा लोग जानते हैं कि सीता जी का अपहरण हुआ ही नहीं था, वास्तविक सीता का अपहरण नहीं हुआ था, जानते हैं ना। कल हम चर्चा थोड़ा किए थे ना, कल कुछ लोग तो बता दिए गए जो नया है, क्योंकि भगवान ही कहे थे कि सीता तुम कुछ समय तक मैं कुछ विशिष्ट मानवीय लीला करना चाहता हूँ, असुरों का संहार करना चाहता हूँ, तो जब तक मैं संहार नहीं करना चाहता तो अग्नि के संरक्षण में निवास करो। तो सीता जी भगवान की इच्छा से अग्नि के साथ थी, अग्नि में निवास कर रही थी, और जब अग्नि परीक्षण हुआ तो वह मूल जो सीता थी उसी जो छाया सीता थी तो मूल सीता में विलीन लेकर प्रकट हुआ। तो सीता जी का अपहरण नहीं हुआ था, सीता जी का देखा ही नहीं था रावण। एक वर्णन है कूर्म पुराण में, जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने आमंत्रित किया। एक ब्राह्मण थे, यह स्थान उनका है मदुराई, जब मीनाक्षी देवी का मंदिर है मदुराई, उसी के नजदीक में एक ब्राह्मण थे और चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किए कि आप हमारे यहाँ आज भोजन कीजिए, प्रसादम कहें। वो गृहस्थ थे, तो चैतन्य महाप्रभु को दोपहर में उन्होंने बुलाया था। चैतन्य महाप्रभु दोपहर के समय उनके घर पर गए। चैतन्य महाप्रभु कहे कि ठीक है, मैं स्नान करके कावेरी नदी में स्नान करूंगा दिन में, और स्नान करने के बाद आपके घर में भोजन करने के लिए आऊँ। पता बता दिए कहाँ घर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु 1 बजे के आसपास, लंच का समय हुआ था, ब्राह्मण के घर में आए तो ब्राह्मण देखते विच्छिन्न अवस्था में, एकदम विक्षिप्त अवस्था में, बड़े दुख में घर में बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु घर में आंगन में आ गए तो चैतन्य महाप्रभु को स्वागत भी बढ़िया से नहीं किया, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरा किया, प्रणाम किया, और देखे चैतन्य महाप्रभु देखे तो कोई प्रसादम तैयार नहीं है, कुकिंग नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े देर तक प्रतीक्षा करके पूछे, हे विप्रदे, हे ब्राह्मण दे, आपने हमको आमंत्रित किया है प्रसादम के लिए, भोजन खिलाने के लिए, लेकिन आपने कुकिंग नहीं किया है, भोजन नहीं पका है, क्या कारण है? तो वे सचमुच समाधि में थे, ट्रांस में थे, लीला चिंतन में थे। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि हाँ थोड़ा विलंब हो गया, अभी कुकिंग नहीं हुआ है। ऐसी बात है कि इस समय दंडकारण्य में कोई फल फूल मूल बड़ा कम मिलता है, लक्ष्मण जी गए हुए हैं संग्रह करने के लिए, फल मूल कंद लेकर आएंगे तब प्रसादम बनेगा। अभी लक्ष्मण जी गए हुए हैं, हम लीला में वो सीता जी के भाव में चिंतन कर रहे थे कि लक्ष्मण जी गए हुए उधर और आएंगे, इसी लीला में सुबह से ही बैठे थे, कुकिंग कुछ नहीं किए थे, लकड़ी फोड़ कुछ नहीं जुटाए थे। तो भगवान पूछे तो कहे कि सां लक्ष्मण गए हुए हैं वन में कंद मूल फल लाने के लिए, अभी बड़ा अभाव हो गया है, मिलता नहीं, जब आएंगे तब भोजन बनेगा। अब चैतन्य महाप्रभु क्या करे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे वो तो दूसरी बात है, आपने हमको बुलाया था सुबह में, बताए थे कि जब भोजन खिलाएंगे। तो उनको होश आया, अरे ये तो सन्यासी साधु महात्मा जिसको मैंने बुलाया था वो घर में आए हुए, तो अब जल्दी जल्दी, अब तो कहाँ समय था, एक तो ऐसे ही बज रहा था, अब जैसे जैसे लकड़ी लेकर जैसे जैसे खिचड़ी, अब क्या बनाए होंगे आप लोग समझ सकते हैं, खिचड़ी बनाए होंगे, एक दो चीज बनाकर भगवान को खिलाए, चैतन्य महाप्रभु को खिलाए, चैतन्य महाप्रभु को खिलाए, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद हम ग्रहण कर लिए। तो कहे कि आप भी विप्रदे, आप भी भोजन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस समय भोजन नहीं कर रहा, मैं उपवास कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु, वह किस लिए उपवास कर रहे हैं? तो कहा कि मैं रामायण में पढ़ा हूं कि मेरी जो आराध्य देवी है, सीता है, मेरी माँ है, उसको जबरदस्ती रावण पकड़कर अपने लंका में ले गया है। जिस दिन से मैं यह सुना हूं कि रावण ने मेरी माँ का स्पर्श किया, वो भी जबरदस्ती से असुर स्पर्श किया। उसी दिन से मेरे दिल में इतना खेद है, इतना दुख है कि हमको भोजन चाहिए है और इस जीवन को नहीं रखना है, हमको मरना है, इसलिए मैं उपवास आमरण उपवास का व्रत ले लिया। ये इतना यह दुख है कि इसको मिटिगेट मैं नहीं कर सकता हूँ, इसी दुख में मैं दुखी, मैं भोजन नहीं कर रहा। चैतन्य महापुर पूरी अपनी ताकत फिलॉसफी लगाए कि नहीं, वास्तविक सीता का अपहरण नहीं हुआ था, माया सीता का अपहरण हुआ था, आप विश्वास कीजिए, मैं सन्यासी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, आप भोजन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आग्रह से खाने लगे, थोड़ा सा खाए, पूरा भोजन है जैसे तैसे शरीर धारण होगा, पानी पीने लगे, कुछ खाते थे, लेकिन वो दुख पूरा पूरा मिटा नहीं। तो चैतन्य महापुरु फिर इसके बाद गए वहां से, तो चैतन्य महापुरु रामेश्वरम धनुषकोटि क्षेत्र में गए, वहां से आप लोग मदुराई भौगोलिक रूप से जानते हैं लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, और आगे जब वहां गए रामेश्वरम में, तो चैतन्य महाप्रभु एक जगह देखे कुछ लोग ब्राह्मण लोग मिलकर राम कथा का आयोजन किए हुए और कुर्म पुराण से कथा हो रही थी। तो ब्राह्मण लोग विद्वान लोग बैठे थे और कुर्म पुराण से कथा हो रही थी, तो कुर्म पुराण की कथा हो रही थी, चैतन्य महाप्रभु बैठ गए कथा सुनने के लिए। तो उस कथा के प्रसंग में यह बात आई, जो पढ़ रहे थे उन्हें कुर्म पुराण से पढ़कर संस्कृत में बता रहे थे कि वास्तव में सीता जी का अपहरण नहीं हुआ था, छाया सीता था, माया सीता का अपहरण हुआ था। वास्तविक सीता तो अग्नि में निवास करती थी और जो अग्नि परीक्षा के समय सीता जी का जो परीक्षण लिया तो मूल सीता और माया सीता वो तो डिसअपियर हो गई, छाया सीता वो दोनों मिलकर, तो वास्तविक सीता को रावण ने चुराया, देखा ही नहीं था, रावण कभी सीता जी का दर्शन ही नहीं किया था, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कुर्म पुराण। तो चैतन्य महाप्रभु को याद आ गई, अपने होस्ट की बात आ गई, उनके जो खिलाए थे उनको जो दुख था पूरा पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मणों से प्रार्थना किए कि आप लोग जो यह इसको अपने लिए नया लिख लीजिए और हमको पुरानी प्रति वह दे दीजिए, क्योंकि मैं नया ले जाऊंगा तो वह पूरा विश्वास करेगा कि नहीं, कौन विश्वास है, ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं तो आपको ये लिख कर ला दिया, तो हमको पुरानी प्रति आप लोग लिख कर वैसा ही रख लीजिए और हमको मूल जो प्रति है कुर्म पुराण का दीजिए। तो उसको लेकर फिर चैतन्य महाप्रभु रामेश्वरम से फिर बैठ पीछे आए मदुराई मीनाक्षी देवी के पास, उसके गांव में गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखिए मैं आपको उस दिन बताया था, आपको विश्वास नहीं हो, देखिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, शास्त्र परम प्रमाण है, देखिए कुर्म पुराण में लिखा हुआ है कि सीता जी का अपहरण रावण ने नहीं किया था, रावण ने सीता जी को देखा ही नहीं था। तो पढ़े अपने आंखों से पढ़े तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र मिल गया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका दुख दूर हो गया। लेकिन चैतन्य महापुरुष से आग्रह किया कि भगवान उस दिन आप आए थे तो उस दिन मैं आमंत्रित करके आपको खिला नहीं सका था, आज मेरा सौभाग्य है, मैं आपको बढ़िया से भोजन कराना चाहता हूँ, आप कुछ दिन तक यहाँ रहिए और हमारे हाथ से आप कुछ प्रसादम ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महापुरुष उनके प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किए, उनसे कहा उनका आतिथ्य स्वीकार किए। जब वहाँ रह रहे थे तो एक दिन वो ब्राह्मण रोने लगे, वो कह रहे थे कि हमको ऐसा लगता है कि जो राम दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिए थे, जो वन में भी निवास किए थे और जो पुल का निर्माण करके रावण के पास गए थे, रावण का वध किए थे, वो आप ही हैं और मेरा मन कोई असत्य भाव कोई चिंतन नहीं कर सकता, हमें लगता है कि आप वही भगवान ही हैं, राम ही हमारे घर पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु अब इतना साहस नहीं कर सके कि कह दूं कि ना, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु को कोई कहता था कि भगवान आप भगवान हैं तो तुरंत कान बंद कर ले, विष्णु विष्णु कहते थे, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए मनुष्य। लेकिन वह जब ब्राह्मण कहे कि आप स्वयं भगवान हैं, यहाँ पर भगवान राम ही हमारे घर पर आए हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको दर्शन देने के, हम पर कृपा करने के लिए, तो भगवान ने कहा कि हाँ आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आ सकता है, लेकिन इस बात को किसी से बताइएगा मत, किसी से बताना, किसी से एक भी व्यक्ति से इस बात को नहीं कहना। तो फिर जब चैतन्य महापुरुष चलने लगे तो ब्राह्मण थे वो भी कहे कि तो मैं भी आपके साथ, अब क्या घर, अब आपको मैं मिल गया, भगवान राम के साथ में हो ही गया, तो आपके ही साथ रहूंगा, अब घर पर नहीं रहूंगा। तो चैतन्य महापुरुष कि नहीं नहीं मेरे साथ नहीं चलना, आप यहीं रहना है, आपको यहीं पर आप रहिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। लेकिन फिर भी वो चलते चलते चल ही रहे थे, मान नहीं रहे थे। चैतन्य महापुरुष मना कर रहे थे कि नहीं आपको जाना है, लौटना है, नहीं जाना है। तो एक समय पर चैतन्य महापुरुष मना कर रहे थे, तब तो फेंटेड हो गए, मूर्छित हो गए, भगवान हमारा परित्याग करते, गिर पड़े जमीन पर, होश उनका खत्म हो जाता। उसी अवसर का लाभ चैतन्य महापुरुष उठाए और जल्दी जल्दी वहां से चले चले गए। तो अब उनकी मूर्छा ऐसे ही, वो तो चिंतन महीनों महीना उनका ध्यान लगता था, अब जब ही जगे होंगे, अब वर्णन नहीं चैतन्य चेतना में, फिर क्या हुआ, चैतन्य महापुरुष को ढूंढ नहीं सकते। तो हमने कहना चाहते कि वास्तविक सीता को रावण ने देखा ही नहीं था। अतः श्रीकृष्णामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्य। जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, अतः श्रीकृष्ण नाम, भगवान का नाम भी नहीं आ सकता है प्राकृत इंद्रियों पर, प्राकृत मन पर। तो भगवान की लादनी शक्ति जो है, प्लेजर जो पोटेंसी है, श्रीमती सीता देवी का, श्रीमती राधा रानी का अन्य लोग दर्शन देख ही कैसे सकते हैं, रावण ने देखा ही नहीं था। इसीलिए किसी को दुखी होने की बात नहीं है। तो भगवान ने भी जो चरित्र किया, विशेष भगवान का एक चरित्र है सीता जी का, वो अग्नि परीक्षा ली गई थी। ठीक है, हम लोग समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र की जय।